ओम शांति। हम सब के बीच में ज्ञानवादिनी तपस्वी मूरत प्यारे बाबा की अनमोल रत्न राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी विराजमान हो चुके हैं। हम उनका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके आते ही एक ऊर्जा का संचार, शक्ति का संचार हर आत्मा के अंतर्गत हो जाता है। आप बाल्यकाल से ही प्यारे बाबा की बच्ची चुनीदा रत्न है। विगत 38 वर्षों से विश्व सेवा के लिए आप अपना समर्पित जीवन हेडक्वार्टर में ही व्यतीत कर रही हैं। आपकी विशेषता है कि आप नई नई इन्वेंशन बाबा के ज्ञान और योग के ऊपर करती रहती हैं। आप धारणाओं की धनी हैं। आपने सर्वप्रथम स्वप्रबंधन SML कोर्स को योग की गहन अनुभूतियों के माध्यम से अध्ययन करके निकाला और लाखों आत्माओं को प्यारे बाबा से जोड़ा। इसी प्रकार आपका दूसरा विषय रहा रामचरितमानस, जो भारत की भूमि पर ही नहीं भारत के बाहर भी लोगों के हृदय पर रामचरितमानस की आध्यात्मिक विश्लेषण आपने लोगों के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। और वर्तमान में आपका गहन अध्ययन और लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जो प्यारे बाबा की मूल शिक्षा है श्रीमद् भगवत गीता को प्रमाणित करना, और बाबा की रचयिता है इसको सबके दिल दिमाग में उतार देना। आप श्रीमद् भगवत गीता पर भी आपकी गहरी पकड़ है और आप भारत सहित विश्व के अनेक महाद्वीपों में प्यारे बाबा की ज्ञान और योग की ध्वजा फहराती रही हैं। और आज हम सबके बीच में उपस्थित होकर आप निरंतर योग की विधि पर हमें मार्गदर्शन करेंगी। ऐसी शक्ति का स्रोत बहाने वाली, ऐसी ज्ञान का मार्गदर्शन करने वाली, नई नई खोजों को हम ब्रह्मावत्सों के अंदर भी खोज की विधि सिखाने वाली आदरणीय उषा दीदी से हम निवेदन करेंगे कि हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीदी,
ओम शांति। बाबा के ज्ञान से हम सभी सुसज्जित होते रहते हैं। प्रतिदिन मुरली से बाबा हमारा श्रृंगार कितना करते हैं, और ये भी बाबा के महावाक्य हम रोज सुनते हैं कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो। आज भी बाबा ने कहा कि भोजन करते समय पूरा समय याद में रहो, लेकिन होता क्या है, एक दो गिट्टी खाते हैं बाबा की याद में और फिर वापस बाहर की दुनिया में बुद्धि योग चला जाता है या वो याद नहीं रहती है। तो सिर्फ एक भोजन के समय पर आधा घंटा याद करना होता है तो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो दिन भर जो बाबा कहते निरंतर याद में रहना है, तो उसके लिए तो कोई ना कोई युक्ति जरूर अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जितना बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी उतनी हमारे अंदर प्राप्ति की अनुभूति समय पर, जैसे बाबा के कोई न कोई नशे वाली बात याद आ जाती तो खुशी का अनुभव करते, या यूं कहे कि बाबा की याद से कभी भी दिल छोटी नहीं होती, या कोई अगर कच कहे तो मन फीलिंग में नहीं आएगा, यह परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे निरंतर याद में रहो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चों को ये दुनिया में जब रहना पड़ता है तो अनेक प्रकार के वाइब्रेशनों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, तो कभी टेंशन आता, तो कभी उदास हो जाते, तो कभी मन मुटाव हो जाता, तो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ऐसी अलग अलग स्थितियां हमारी जो बनती है, तो उसमें फिर जितना अधिक हम फ्लक्चुएशन में रहे, तो बाबा की शक्ति का अनुभव जो होना चाहिए, या जो प्रैक्टिकल उस योग का प्रमाण जीवन होना चाहिए, वो नहीं होता है। मुझे बाबा की एक अव्यक्त मुरली भी याद आती है, और आदरणीय प्रेम दीदी जो थे देहरादून के, वो हमेशा ये बात कहते थे कि हमें योग लगाने वाले योगी नहीं बनना है, हमें योगी जीवन वाले योगी बनना है। योग लगाना माना दो तीन घंटों का होता है, लेकिन योगी जीवन वाले निरंतर होते हैं। योग लगाना माना मेहनत है, और योगी जीवन माना मोहब्बत है, तब वो नेचुरल योगी जीवन बनती है, जब बाबा की याद निरंतर होती है। और बाबा को भी पसंद नहीं मेहनत वाले योगी, कभी लगा फिर टूटा, फिर लगा फिर टूटा, ये बाबा को भी नहीं पसंद आता है कि बच्चे मेहनत क्यों करते हैं। एक नेचुरल योगी जीवन रहे कि हर वक्त बाबा की याद निरंतर बनी रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले बाबा से हमारा इतना गहरा प्यार होना चाहिए, जितना बाबा के साथ हमारा प्यार होगा, मन देहधारियों से हमारा किनारा होगा। किनारा माना बोलना ही नहीं है, उसको बाबा नहीं कहते हैं। जब रहना है उसी दुनिया में तो निभाना भी है, लेकिन फिर भी जैसे अपने आप को न्यारा कर देना। तो बाबा का प्यारा हम सहज बन जाते हैं, तो जितना न्यारापन उतना प्यारापन। दूसरा, जितना दैहिक दुनिया के आकर्षण से हम परे हैं, उतना हम निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं। अगर ये दैहिक दुनिया देहधारी हमें निरंतर आकर्षित करते रहे, हमारी बुद्धि को खींचते रहे, तो बाबा की याद तो नहीं रहेगी, है ना? तो इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे इन आकर्षणों से परे हो जाओ। लेकिन क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे साइंस के साधन भी बढ़ते हैं, ये हमें इसी दुनिया के आकर्षण में खींचती रहती है। इसलिए बाबा की याद निरंतर नहीं रहती, नहीं तो बाबा ऑफर कर रहे हैं, बच्चे आप हर समय मुझे जिस तरीके से चाहो अपनी उन्नति के लिए यूज कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे ABCD होती है, उसको पक्का करना पड़ता है। तो हमें भी निरंतर याद में रहने के लिए ये ABCD पक्की करनी पड़ेगी। कौन सी? बड़ा पक्का है, आत्मा परमात्मा की बात नहीं करती हूँ कि आत्मा बाबा चक्र, ये नहीं मैं ABCD की बात कर रही हूँ, लेकिन स्थिति की ABCD बता रही हूँ आज। के दिन के आरंभ हम शुरू करें कि जब अमृत वेले उठते हैं तो उस समय आत्म अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। जब हम योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होकर के बैठे, और आत्म अभिमानी का मतलब ही है कि जब हम अशरीरी यानी शरीर के भान से परे अपने आप को करते हैं, आत्म स्थिति में स्थित कर देते हैं और आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम सारे दिन का ये फाउंडेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कई बार मुरलियों में भी हम बच्चों को बार बार स्मृति दिलाते, बच्चे आत्म अभिमानी होकर के रहो, आत्म अभिमानी होकर के बैठो बाबा की याद में। तो अशरीरी देह की भान से अपने आप को परे करके आत्म स्वरूप में स्थित करना, यानी आत्मा के सातों गुणों से अपने आप को भरपूर करना है। और इसीलिए जब भी हम बैठे तो ये लक्ष्य जरूर रहे कि मुझे आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आत्म अभिमानी होते जाते हैं तो आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप यानी वो ऊर्जा अपने चारों ओर विकसित करते हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र के चारों ओर लाइट का क्राउन दिखाते हैं, वो प्रवाह दिखाते हैं, ठीक इसी तरह जब हम आत्म अभिमानी होकर के योग में बैठते हैं तो उस समय आत्मा के सातों गुणों का प्रवाह हमारे चारों ओर भी एक दिव्य कवच को क्रिएट करता है, और ये दिव्य कवच बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। बाहर के प्रभाव से हमारी स्थिति को सेफ रखेगा। जो फ्लक्चुएशन हमारे जीवन में आएगा वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी कर्मेंद्रिय को समेटकर अशरीरी होकर आत्म स्वरूप में अपने आप को स्थित कर दे, और जैसे ही उस स्वरूप में स्थित किया तो बी है बीज स्वरूप, बीज बन गए ना एक जैसे। मैं आत्मा कौन हूँ? बीज स्वरूप हूँ। और जब मैं आत्मा बीज हूँ तो जैसे वो बीज भरपूर होता है वैसे अपने आप में भी जब हम परमधाम में आत्म स्वरूप स्थिति में अपने आप को भरपूर महसूस करके वहां बैठते हैं सातों गुणों से भरपूर, तो बीज बन गए। तो बीज स्वरूप बाबा से हमारा कनेक्शन बहुत सहज हो सकता है। और जब बीज रूप बाबा से कनेक्शन हुआ तो बीज स्वरूप बाबा की सकाश, जैसे बाबा कहते हैं कि वृक्ष के बीज से सारे पेड़ को सकाश मिलती है, क्योंकि बीज इतना पावरफुल है। बीज अगर कमजोर है तो उस पर फल भी नहीं लगता है, लेकिन बीज अगर शक्तिशाली है तो उसका हर सीजन में जो फल आता है वो भी रसदार भरपूर होता है। ठीक इसी तरह बाबा बीज है परमधाम में, और मैं आत्मा भी बीज होकर के जब बैठती हूँ तो बाबा की वो सकाश को मैं अपने अंदर सहजता से खींच करके अपने आप को सर्व प्राप्तियों से संपन्न भरपूर कर सकती हूँ। तो इसीलिए बाबा कहे कि अगर सुबह सुबह अमृत वेले ये स्थिति हमारी हो गई तो फिर जैसे हम नीचे आते हैं तो तीसरा सी यानी कंबाइन स्थिति में रह सकते हैं। तो इसीलिए कंबाइंड, भाई मैं आत्मा ऊपर से जब अवतरित होती हूँ तो जैसे कि मैं अकेली शरीर में अवतरित नहीं होती हूँ, लेकिन बाबा की सकाश को लेकर के मैं जब अवतरित हुई तो बाबा के साथ का एहसास हर वक्त मैं कर सकती हूँ। कैसे ये कंबाइन स्थिति सारा दिन हमारी बनी रहे, तो उसके लिए जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि बच्चे कोई ना कोई संबंध जोड़ लो बाबा के साथ। सुबह जब उठे तो जैसे उस माता पिता से आशीर्वाद लिया, फिर जब मुरली सुनने आए तो टीचर से हम पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा हमारा सुप्रीम टीचर हमें कितनी अच्छी ज्ञान की बातें सुना रहा है, फिर सतगुरु के वरदान को लेकर के दिन आरंभ करते हैं, दिन के समय उसको खुदा दोस्त बना देते हैं और खुदा दोस्त के साथ हम जहां जाना है साथ मिलकर के जाएं, फिर कभी उसको प्रियतम बना दिया और प्रियतम बना करके जब उसके साथ में बैठ करके कोई भी मन की बात को हम शेयर करें तो कंबाइंड रहना आसान हो जाएगा। और फिर कभी उसको बच्चा भी बना दो, भोजन कराओ बाबा को, भोग लगाते हैं तो किसको खिला रहे हैं, जैसे उस बच्चे को खिला रहे हैं तो माँ कितना स्नेह से प्यार से बच्चे को खिलाते हैं। तो इस तरह से बाबा के साथ निरंतर ये कंबाइंड पने का अनुभव हम सहजता से कर सके, लेकिन वो तब जब आत्मा अभिमानी स्थिति हमारी पावरफुल रही हो, बीज स्वरूप बाबा से वो सकाश हमने प्राप्त की है और हमारे पिछले संस्कारों को परिवर्तन किया उस सकाश से, या विकर्मों को हमने भस्म किया है उस बीज स्वरूप स्थिति से, क्योंकि बीज स्वरूप स्थिति तो बहुत पावरफुल है, वही विकर्मों को भस्म करने का आधार है। तो पिछले जन्मों का जो विकर्म या जो संस्कार मेरे अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन रहे हैं, उसको जब मैं भस्म करती हूँ जानते हुए कि भाई उसको पालना नहीं है, अंश को भी पालना नहीं है, बाबा ने जैसे उस दिन मुरली में कहा, क्योंकि वो अंश भी वंश का स्वरूप ले लेता है, इसलिए ये गफलत में न रहे कि अंश ही है ना, छोटा सा ही संस्कार है ना, लेकिन ये छोटा सा संस्कार भी कैसे आगे चल करके पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न का रूप ले लेगा और शायद हमें फेल कर देगा। बाबा की स्मृति से मैं दूर करेंगे तो इसलिए उसको रियलाइज करते हुए उसको भस्म करना, तो बीज स्वरूप स्थिति में हर वो पुराने संस्कार अंश सहित उसके वंश को समाप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है, है ना? तो इसीलिए तब जाकर के दिन में हम कंबाइंड स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं और हर घड़ी ये महसूस होगा बाबा मेरे साथ साथ है, फील होगा जैसे बाबा सूक्ष्म स्वरूप में मेरे साथ साथ चल रहा है, मुझे गाइड कर रहा है, है ना? और जो बाबा की मुरली को सुना उस मुरली को उसी दिन मुझे धारण जरूर करना है, चाहे चार पॉइंट भी मैं उसमें से उठा करके उस दिन की धारणा में मुझे जरूर ले आना है, ताकि उस दिन के मुरली को जब धारण करते हैं तो उसकी खुशी बहुत अधिक होगी और तब हमें बाबा के साथ का वो अनुभव होगा, क्योंकि उस दिन के महावाक्य को हमने धारण किया। दूसरी बात, जैसे कहा जाता है कि भगवान को भक्ति में भी कहा जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है, तो उस दिन की जो मुरली चली तो बाबा ने उसी समय को देखते हुए चलाई है। आज से 70 साल पहले वो चीजें नहीं थी जिसके प्रति बाबा अभी इशारा कर रहा है ना? जब बच्चे यज्ञ के अंदर थे, बाबा के संग थे, तो उस समय शायद उनको इतनी मेहनत नहीं आती थी, क्योंकि बाबा के साथ साथ हर कर्म करते रहते थे। लेकिन बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है कि बाबा जब मुरली सुनाता है, साकार में भी जब सुनाते थे, तो जो बाबा के सामने थोड़े बच्चे बैठे थे उनको देखकर बाबा नहीं चलाते थे। बाबा उस समय आने वाले समय के हर बच्चे को इमर्ज करते थे। इसका मतलब कि बाबा ने सूक्ष्म में संकल्पों के द्वारा उस समय मुरली सुनाते समय हमें भी इमर्ज किया था, हमें भी इमर्ज किया था, और हमें इमर्ज करते हुए ही बाबा की वो मुरली चली है। बाबा जानते थे ये बच्चे आएंगे, उनके सामने ये बातें आएंगी, तो उस अनुसार वो मुरली के अंदर वो बातें पहले से ही बाबा ने दे दिया है। तभी तो बाबा कहते कि बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि इतने सालों पहले बाबा ने हमारा आवाहन किया था और संकल्पों में हमें इमर्श करके बाबा ने सारी मुरली चलाई। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जिस दिन भी आपके मन के अंदर कोई भी संकल्प आता है, दूसरे दिन मुरली में उसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? कैसे मिला वो जवाब? इसका मतलब बाबा ने मुझे इमर्ज किया था और इमर्ज करके बाबा ने मेरे संकल्पों को उस समय कैच कर लिया था। यही तो परमात्मा शक्ति का प्रमाण क्या है कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है कि बाबा बेहद का बाबा है, तो उस समय उन्होंने हमें इमर्ज करके हमारे संकल्पों को कैच करके बाबा ने वो बात उस समय कह दिया था और इसलिए वो मुरली को रिवाइज किया जाता है। ये बाबा ने डायरेक्शन दिया था 69 में कि जो मुरलियां चली हुई है आने वाले बच्चों ने सुनी नहीं है, इसलिए वही मुरलियां रिवाइज होगी। क्योंकि बाबा ने तो हमें देख करके चलाया था ना, इसलिए कोई भी बच्चा उस महावाक्य से वंचित न रहे, उसके लिए बाबा ने वो बातें चलाई हुई है। इतना बाबा का हमारे से प्यार है। तब कहा कि वो महावाक्य जो मेरे लिए बाबा ने उच्चारण किए हैं, उसको आत्मसात करके उस दिन कम से कम उस मुरली से 3-4 बातें भी मुझे धारण जरूर करनी है, और अगर मैं करूंगी तो बाबा को भी कितनी खुशी होगी सूक्ष्म में, और उसकी खुशी मुझे कितनी होगी कि मैंने वो आज्ञाकारी बन करके उस बात को मैंने क्या किया, आत्मसात किया, धारण किया। तो बाबा के साथ का कंबाइन होने का अनुभव बहुत गहरा होने लगेगा। इसलिए बाबा कहे कंबाइंड स्वरूप में रहो। तो आत्म अभिमानी, बीज स्वरूप, और जब अवतरित हो कंबाइंड स्वरूप में। फिर चौथा देही अभिमानी स्वरूप। कितना एक्यूरेट है एक एक स्थितियां, है ना, कि फिर जब कर्म में आते हैं तो कर्मेंद्रिय के मालिक बन करके कर्मेंद्रिय को यूज करो। मैं आत्मा करावनहार हूं और ये कर्मेंद्रिया करणहार है। देही अभिमानी मतलब कि जो आत्माभिमानी बन करके हमने आत्मा के सातों गुणों से अपने आप को भरपूर किया है, अब देही अभिमानी बन करके मैं आत्मा मालिक बन करके उस ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय से हर कर्म में प्रवाहित करूं, ताकि उस कर्म में भी कोई भी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसलिए बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, मुरली में भी बार बार हमें कहते बच्चे देही अभिमानी होकर हर कर्म करो। तो डी माना देही अभिमानी स्थिति, जहां मैं आत्मा करावनहार हूं और मैं करावनहार हूं लेकिन मुझे निमित्त बनाकर कराने वाला बाबा है। तो बाबा कंबाइन है, अब कंबाइन है और मैं कर्मेंद्रिय द्वारा करा रही हूं, जैसे बाबा डायरेक्शन दे रहा वैसे मैं करा रही हूं। तो दैहिक अभिमान की स्मृति में नहीं आकर के जो कर्म करेंगे वो भी न्यारा होकर के करेंगे तो लाइटनेस का अनुभव होगा। इतने लाइट हो जाएंगे और ऐसे लगेगा ही नहीं जैसे आज मैंने सारा दिन काम किया, लेकिन उस लाइटनेस के कारण, बाबा के साथ के कारण ऐसा महसूस होगा जैसे बस हल्के होकर के कर रहे थे। कभी शारीरिक कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन वो सातों गुण को कर्मेंद्रिय के द्वारा सिर्फ कर्म में नहीं लेकिन व्यवहार में भी, संबंध में भी उस ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। तो हमारे संबंध हरेक के साथ कैसे हो जाएंगे, योगी जीवन वाले हो जाएंगे, मधुर होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, जो योग का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो योगी जीवन वाले हैं वो दिखाई देगा। यानी हमारे संस्कार किसी से टक्कर नहीं खाएंगे, लेकिन हम अपने संस्कारों में इतने फ्लेक्सिबल होकर के चलेंगे जैसे कि हल्के हैं। ना हमें किसी की शिकायत, ना किसी को हमारी शिकायत, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। और जो आज बाबा ने कहा, क्रोध, क्रोध कहाँ गायब हो जाए, मुझे क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब मैं देही अभिमानी होकर करूंगी तो क्रोध करने की जरूरत पड़ेगी। बाबा कहे वो प्रेम ऐसी ऊर्जा फैलेगी कि अगर कोई चोर भी होगा तो वो आपके सामने सच बोल देंगे, आपको उसको डांटने दपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोल क्या किया, आज हमें करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम देही अभिमानी नहीं है। लेकिन नेचुरल योगी जीवन वाले जब बन जाते हैं तो जितना हमारा प्यार का व्यवहार संबंधों में होगा या कहां भी होगा तो वो आत्मा भी उस सच्चाई में आ जाएगी, अपने सत्य स्वरूप में आ जाएगी। वो अगर छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकेगी, क्योंकि आपका सत्य स्वरूप उसको भी सत्य बुलवा देगा। आपको पूछने की, क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही वो कहेगा एक बात बतानी थी आपसे, है ना, आप कहेंगे बोलो। और प्यार से जब आप उसके साथ व्यवहार करते हैं तो पहले ही कहेगा माफ कर देना, मेरे से ये गलती हो गई है, स्वीकार कर लेगा। तो इसीलिए बाबा कहे योगी जीवन वाले योगी बनो, योग लगाने वाले योगी नहीं बनो। योग लगाया फिर उठ करके आए फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया तो वो योग क्या लगा। इसीलिए तो घर में बच्चे भी माँ बाप से पूछते हैं, आप योग करके आए ना, अगर आप गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर तो बच्चे क्या कहेंगे, आप योग करके आए ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। वो भी आपको योगी जीवन के रूप में देखना चाहते, खाली बाबा देखना चाहते नहीं, आपके परिवार में जो है वो भी आपको योगी जीवन के रूप में देखना चाहते। योग अलग और जीवन अलग ये नहीं देखना चाहते कि योग करने समय तो योग किया लेकिन जीवन में वही पुराने संस्कार अगर कार्यान्वित होते रहे तो योगी जीवन तो नहीं हुआ। इसलिए मेहनत लगती है हमें, है ना। तो देही अभिमानी होकर के हर वक्त कंबाइंड होकर के देही अभिमानी बन करके चलेंगे तो निरंतर नहीं होगा। उसके बाद कौन सी स्थिति रह गई, उसके बाद फरिश्ता। शाम को पुनः जब बाबा के साथ में बैठो, दिन भर देही अभिमानी होकर के कंबाइंड रूप में चले तो शाम को पुनः जब बाबा को याद करने बैठो उस समय सहज फरिश्ता हो जाएंगे। बाबा ने कहा ना, दिन भर का प्रभाव ही योग की स्थिति पर पड़ता है। तो इसलिए जब शाम को योग में बैठो, अभी हमें महसूस होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है शाम को योग करने का, भी बैठ नहीं पाते हैं हम, लेकिन जब देही अभिमानी होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर के आप चलेंगे तो कार्य इतना सहज और जल्दी पूरा हो जाएगा कि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो शाम को पुनः जब योग में बैठते हैं, लक्ष्य रखो 6:30 से 7:30 नमः शाम का योग मुझे करना है, तो उस समय सहज फरिश्ता स्वरूप और फरिश्ता होकर के बाबा जैसे कहते हैं बच्चे भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है। मंदिरों में कितना वो पुकार रहे हैं, तो उनकी पुकार सुनो, फरिश्ता बन करके उनके पास जाओ और जाकर के उनको सकाश दो, शक्ति दो, शांति दो, जिसको जो चाहिए वो आपसे खींच लेगा। लेकिन आप उस स्वरूप में फरिश्ता बनकर के भ्रमण तो करो, खाली इंटरनेशनल योग दिन के ऊपर ही थोड़ी करना है हर तीसरे रविवार को, नहीं, प्रतिदिन शाम को फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतन में जाकर के बाबा को साथ लेकर के फिर बाबा के साथ हम भ्रमण करें। बाबा उन भक्तों को जो देंगे, जैसे हम भी साथ साथ बाबा के देना शुरू करें, तो वहां भी बाबा के साथ साथ नम शाम के समय वो फरिश्ता स्वरूप एकदम हल्कापन, लाइटनेस फील होगा, क्योंकि दिन भर हमारी स्थिति ऐसी रही। और फिर तब जाकर के सहजता से जो बाबा कहते लास्ट स्थिति कर्मातीत, आज जो मुरली में कहा बाबा ने, कर्मातीत बनना आसान हो जाएगा, कि कोई भी कर्म का प्रभाव हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रकार की ऊंचाई नीचाई तो चलती रहेगी जीवन में, जीवन है तो जीवन है तो ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, ये तो होगा नहीं कि भाई हर दिन बहुत अच्छे ही जाए, कभी कोई परिस्थिति, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेने आती रहेगी ना। लेकिन जब माया परीक्षा लेने आए तो भी उस परीक्षा का प्रभाव मेरी स्थिति को प्रभावित करके ऊपर नीचे ना कर सके। कर्म जरूर करना है, कर्म को छोड़ना नहीं अंत तक, लेकिन हर कर्म करते हुए भी वो कर्म मुझे बंधन में बांधने वाला न बने, लेकिन बाबा के साथ का किया हुआ हर कर्म मुझे सहजता से बंधन मुक्त बना दे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ ही कराए, ऐसी जीवन मुक्त कर्मातीत स्थिति हमारी सहजता से बने, तो ये बाबा चाहते हैं कि प्रैक्टिकल योगी जीवन है। विघ्न आएंगे, बातें आएंगी, शरीर के हिसाब किताब भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन ये सब आकर के भी मेरे चेहरे के अंदर परिवर्तन नहीं ला सके। मैं सदा बाबा के साथ का अनुभव करते हुए निरंतर उसमें समाई रहूं, उस स्नेह में समाई रहूं, तो ये है निरंतर याद का प्रैक्टिकल स्वरूप, कि जब रात को फिर हम अपना चार्ट देखें, तो सचमुच मैं कितना कर्मातीत स्थिति में रही ये मैं देख सकूं, यह छोटे छोटे कर्म भी मेरी स्थिति को प्रभावित करते रहे, मुझे ऊपर नीचे करते रहे, क्या किया, तो ये मुझे देखना है, तब तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सहजता से होगा। तो इसीलिए जैसे डॉक्टर लोग भी विटामिन देते हैं ए बी सी डी, फिर एफ और के, है ना, तो इसी तरह निरंतर योगी जीवन के लिए ये जो विधि है, उसी विधि से अपने आप को भी चलाते हुए सहजता से हर दिन इतना सुंदर अनुभव करें हम, जैसे मैं बाबा से अलग हूँ या बाबा मुझसे अलग है, ये महसूसता ही नहीं आए, अलग है ही नहीं। जैसे चतुर्भुज के रूप में मैं और मेरा बाबा हर वक्त जो भी सीन आए, सीन को देखते हुए वाह बाबा वाह, बाबा कराने वाला करा रहा है, बाबा को साथ लेकर करते चलो तो देखो बाबा कितने सुंदर साथ के अनुभव हर वक्त कराते रहेंगे। कहीं आप खड़े होंगे, बाबा के साथ खड़े, आपको पता नहीं है ऊपर से डाल गिरती है, लेकिन उसी समय आप खिसक जाते, कहते कि पता नहीं 2 सेकंड पहले ही मैं खिसक गई। अनुभव है ना, तो बाबा साथ है तभी तो ये अनुभव है ना। ऐसे कई अनुभव है। कुछ समय पहले एक भाई मुझे सुना रहे थे कि इतनी जोर की बारिश थी और मैं झाड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसी समय बिजली गिरी। बिजली गिरी तो जैसे सीधा पूरा आई मेरे ऊपर, लेकिन जैसे मुझे फेंक करके वो धरनी में समा गई जैसे, लेकिन मैं बच गया। नहीं तो बिजली गिरने के बाद बचे, ये हो सकता है। तो ये बाबा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि जो बाबा की याद में उस समय बारिश एकदम जोर से चालू हुई तो बाबा करके वो झाड़ के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन बाबा की याद के अभी बाबा घर जाना है, घर पहुंचना है, है ना, ये भी उसको ये अंदर में हो रहा था। तो बाबा की याद होने कारण बिजली गिरने के बाद भी वो व्यक्ति बच जाए, ये हो सकता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण जीवन के अंदर कई बार देखने को मिलते हैं कि बाबा की स्मृति जहाँ है वहाँ बिजली आने के बाद भी पूरे शरीर में, बोले बिजली तो जैसे वो करंट तो महसूस हुआ, लेकिन करंट महसूस होने के फेंक दिया जैसे ये भी फील हुआ, क्योंकि जैसे वहां पर जहां मैं खड़ा था वहीं पर वो बिजली को समाना था तो फेंक करके जैसे चली, तो ये किसने फेंका। तो इसीलिए कहा कि जब जीवन के अंदर बाबा को साथ लेकर के चलो तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई भी हमारे अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसीलिए निरंतर योगी जीवन वाले योगी बन करके चलना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो ये भी सीधी तो याद रहेगी ना, हाँ, इसलिए सहज करके दिया ताकि सहज याद रहे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कईयों को, ये स्थिति वो स्थिति, वो स्थिति पहले आएगी, ये स्थिति पहले आएगी, कई लोग पूछते रहते, इसलिए नंबर बार उसको लगा करके। पता नहीं आज सुबह सुबह ही बाबा की मुरली सुनते सुनते अचानक ये चिंतन आया एक प्रकार से कि इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये, तो ये भी बाबा की करामत है, कराने वाला तो बाबा ही है, क्योंकि बाबा खाली निमित्त बना देते हैं, मुख तो यूज करता है बाबा ही करता है, ताकि आप सबको सहज हो जाए। थैंक्स बाबा, सच्ची बात है, शुक्रिया।
ओम शांति। सब निरंतर योगी बन गए, निरंतर योगी माना योगी जीवन। तो हम दीदी का एक हाथ की ताली से शुक्रगुजार करते हैं
बाबा का,
कि जो कठिन विषय था उसको आपने इतना सरल कर दिया कि ABCD मल्टी विटामिन्स हमें देकर के आत्मा को हेल्दी हैप्पी फोर एवर के लिए कर दिया। तो आप जानते हैं दीदी ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, इस प्रकार दीदी बता रहे हैं कि आज ही उन्हें ये नया चिंतन आया, और नए चिंतन का नवनीत मक्खन सर्वप्रथम किसने खाया,
आपको ही मिला,
किसने खाया, तो अपने लिए भी एक हाथ की मौन है, एक हाथ की ताली हम अपने लिए भी बजाएं कि बाबा आपको दीदी के द्वारा कितना प्यार लुटा रहे हैं और कितना आपको अपने समान प्यार में समाया हुआ देखना चाहते हैं। दीदी ने कितनी दूर से हमें गहराई में ले गई कि जब हम साकार बाबा थे और हम साकार में उनके सामने नहीं थे, लेकिन बाबा ने हमें इमर्ज करके हमें आज्ञाएं दी, शिक्षाएं दी, निर्देश दिए और उनको आज हम जब पालन कर रहे हैं तो वो शिक्षाएं, वो आज्ञाएं हमें प्रभु प्यार का एहसास करा रही है। कितनी दूर से दूर ले जाकर हमें बाबा के साकार समय से ले जाकर और आज तक के काल को उन्होंने जैसे आमने सामने कर दिया। ऐसी सूक्ष्म पैनी तीक्ष्ण दिव्य बुद्धि आदरणीय दीदी की है जो हमेशा चिंतनशील रहती हैं और नई नई बातें हम सब के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए, विश्व पिता की प्रत्यक्ष करती रहती हैं। हम दीदी से यही संकल्प लेकर जाएंगे कि हम भी इस प्रकार की बाबा की मुरलियों का प्रतिदिन मनन करके ऐसा नया मक्खन चिंतन निकालेंगे और धारण करेंगे। ऐसा संकल्प कर रहे हैं सब? तो ये हमारी स्थितियां जो दीदी ने हमें बताई, विधि बताई निरंतर योगी की, वो बनी रहेगी। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम पुनः धन्यवाद करते हैं और प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं।
Bye.